ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ સંખ્યા 6 અધ્યાય સંખ્યા 9 શ્લોક સંખ્યા 22 મેરે પીછે દોહરાઈએ અવિસ્મિતમ તમ પરિપૂર્ણ કામમ સ્વેન એવ લાભેન સમમ પ્રશાંતમ વિના ઉપસર્પતિ અપરમ હિ બાલિશઃ લાંગુલેન અતિતિતર્તિ સિંધુમ અવિસ્તિમમ તમ પરિપૂર્ણ કામમ સ્વયનેવ લાભેન સમમ પ્રશાંતમ વિનોપસ્પર્તે પરમ હિ વાલિશઃ શલાંઘેનાતિતર્તિમ સિંધુમ અવિસ્તિમમ તમ પરિપૂર્ણ કામમ સ્વયનેવ લાભેન સમમ પ્રશાંતમ વિનોપસ્પર્ત પરમ હિ બાલિશઃ શલાંઘેન લેનાતિતર્તિર સિંધુમ અવિસ્તિતમ તમ પરિપૂર્ણ કામમ સ્વયનેવ લાભેન સમમ પ્રશાંતમ વિનોપસ્પર્ત પરમ હિ બાલિશઃ શલાંઘેન લેનાતિતર્તિ સિંધુમ અવિસ્તિતમ જો કભી વિસ્મિત નહીં હોતા તમ ઉસ ઈશ્વર કો પરિપૂર્ણ કામમ પરમ સંતુષ્ટ સ્વેન અપને આપસે એવ નિસંદેહ લાભેન લાભ સમમ સમદૃષ્ટિ પ્રશાંતમ અત્યંત સ્થિર વિના બિના ઉપસર્પતિ પાસ જાતા હૈ અપરમ અન્ય હી નિસંદેહ બાલિશઃ મૂળ શ્વ કુત્તે કી લાંગુલેન પૂંછ સે અતિથિ તર્તતી પાર કરના ચાહતા હૈ સિંધુમ સમુદ્ર કો અનુવાદ પડતા હું શિલ્પ ઉપાદ દ્વારા શિલ્પ ઉપાદ કી મેરે પીછે દોહરાઈએ ભગવાન સમસ્ત સંસારિક બુદ્ધિ સે રહિત और विस्मयहीन है वे सदैव प्रसन्नचित एवं अपनी स्वरूप सिद्धि से परम संतुष्ट रहने वाले हैं उनकी कोई सांसारिक उपाधि नहीं होती अतः वे स्थिर एवं विरक्त रहते हैं वही श्री भगवान सबों के एकमात्र आश्रय हैं अतः जो मनुष्य किसी अन्य से अपनी रक्षा की कामना करता है वह अवश्य ही बड़ा मूर्ख है और कुत्ते की पूंछ पकड़कर समुद्र को पार करना चाहता है। इसका तात्पर्य पढ़ता हूं, ध्यानपूर्वक सुनिए। इसके तात्पर्य श्री प्रभुपाद लिखते हैं, कुत्ता पानी में तैरना जानता है, किंतु यदि कुत्ता समुद्र में रहे और कोई उसकी पूंछ पकड़कर समुद्र पार करना चाहे तो वह निपट मूर्ख है। ना तो कुत्ता समुद्र पार कर सकता है, ना ही कोई मनुष्य उस कुत्ते की पूंछ पकड़कर समुद्र को पार कर सकता है। इसी प्रकार जो मनुष्य ज्ञान के समुद्र को पार करना चाहता है, उसे न तो किसी देवता की न किसी अन्य की शरण ग्रहण करनी चाहिए, उसे एकमात्र श्री भगवान की शरण में जाना चाहिए। अतः श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के 58वें श्लोक में कथन है, समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम महत पदम पुण्य शो मुरारहे भवाम बुद्धि सपदम परम पदम पदम यदा विपदाम न तेषाम। भगवान के चरण कमल अनिश्वर नाव के तुल्य हैं, यदि कोई इस नाव का सहारा लेता है तो वह ज्ञान सागर को सरलता से पार कर लेता है। अतः पद पद में संकटों से ग्रस्त इस भौतिक जगत में रहकर भक्त के लिए कोई भय नहीं रह जाता। मनुष्य को चाहिए कि अपने बनावटी विचारों के बजाय परम शक्तिमान की शरण खोजे। हरे कृष्ण। भगवान समस्त सांसारिक बुद्धि से रहित और विस्मयहीन हैं। वे सदैव प्रसन्नचित एवं स्वरूप सिद्धि से परम संतुष्ट रहने वाले हैं। उनकी कोई सांसारिक उपाधि नहीं होती, अतः वे स्थिर एवं विरक्त रहते हैं। वही श्री भगवान सबों के एकमात्र आश्रय है। अतः जो मनुष्य किसी अन्य से अपनी रक्षा की कामना करता है, वह अवश्य ही बड़ा मूर्ख है। वह कुत्ते की पूंछ को पकड़कर समुद्र को पार करना चाहता है। यहां भगवान के गुणों की चर्चा हो रही है, क्वालिटीज। तो पहली बात यहां कही कि सांसारिक बुद्धि से रहित और विस्मयहीन, अविस्मितम, पूर्ण परिपूर्ण कामम, मतलब भगवान कभी विस्मित नहीं होते। सांसारिक बुद्धि से रहित, इसका क्या अर्थ है? वट इज सांसारिक बुद्धि? सांसारिक बुद्धि किसे कहते हैं? अरे भाई, जो बुद्धि हमें संसार में मिली है वो सांसारिक बुद्धि है। कैसी बुद्धि मिली संसार में? पहली बात बताएं कि बुद्धि जड़ है कि चेतन है? चेतन है। चेतन है तो एग्जिस्ट करनी चाहिए, समाप्त कैसे हो जाती? जब आप भगवान के धाम में जाते हैं तो आपके साथ क्या जाता है? When you go to Krishna's abode, तो आप अपने साथ क्या ले जाएंगे? चलिए जो सिंपल क्वेश्चन करता हूं, आपके इस भौतिक संसार में होने का कारण क्या है? किस तरह से आप भौतिक संसार में एक योनि से दूसरी योनि में अपने आप को ट्रांसफर करते हैं? अपने आप मीन्स सोल, मतलब आत्मा एक योनि से दूसरी योनि में ट्रांसमाइग्रेट कैसे करती है, एक योनि से दूसरी योनि कैसे धारण करती है? बेसिक्स हैं प्रभु, वेरी वेरी सिंपल बेसिक्स। देखिए, मृत्यु हुई, पृथ्वी जल अग्नि आकाश, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये पांच मूल स्थूल तत्व है, मोटे मोटे जो दिखते हैं। इसको आपने या तो जला दिया या दफन कर दिया कब्रिस्तान में। पारसी है तो उनको गिद्धों के लिए ओपन मैदान में खाने के लिए छोड़ देते हैं। हर एक के अपने अपने ट्रेडिशंस हैं। कोई पानी में बहा देता है तो कोई उनको बरी कर देता है, तो कोई जला देता है, और कोई ओपन में गिद्धों के खाने के लिए छोड़ देता है। बेसिकली पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये पांच ऐसी वस्तुएं हैं जिनको आप समाप्त कर देते हैं। पृथ्वी पृथ्वी में चली जाती है, वायु वायु में चली जाती है, अग्नि अग्नि में चली जाती है, आकाश आकाश में चला जाता है, जल जल में चला जाता है। मीन्स हर चीज जो है अपने अपने ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूएंट जिससे बनी है उसमें समा जाती है। परंतु सूक्ष्म तत्व मन बुद्धि और अहंकार, ठीक है, पांच ज्ञान की इंद्रियां, पांच कर्म की इंद्रियां और पांच उनके विषय, 15 और 5 20 और 3 23, ये 23 तत्व हैं। 24वां तत्व है प्रधान, इसको कि मूल प्रकृति भी कहा जाता है, साधारण भाषा में उसको प्रकृति के तीन गुण भी कहते हैं, परंतु जो मूल प्रकृति है जिसको प्रधान के नाम से पुकारा गया है, जिसको अव्यक्त प्रकृति कहा गया है, विच इज नॉट विजिबल, वो 24वां तत्व है। 25वां तत्व क्या है? 25वां तत्व है काल, समय। 26वां तत्व है आत्मा और 27वां तत्व है हृदय में बैठे परमात्मा। 27 एलिमेंट्स हैं आपके अंदर। इंद्रियां अर्थात आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा समाप्त हो गए, जल गए, बरी हो गए। कर्म की पांच इंद्रियां हैं, दोनों पैर एक इंद्री कहलाती है, दोनों हाथ दूसरी इंद्री कहलाती है, जिह्वा में जो बोलने की शक्ति है वो तीसरी इंद्री कहलाती है, और उपस्थ और गुदा मल मूत्र त्यागने के स्थान, ये दो इंद्रियां हुई, तो पांच कर्म की इंद्रियां हुई, ये इंद्रियां भी समाप्त हो गई। कर्म की इंद्रियां समाप्त हो गई, ज्ञान की इंद्रियां समाप्त हो गई, ज्ञान की इंद्रियों के साथ उनके जो विषय हैं वो भी समाप्त हो गए। जो सूक्ष्म तत्व है वो कहां गए? मीन्स मन बुद्धि और अहंकार, ये तीन चीजें जो हैं, जो तीन सूक्ष्म तत्व हैं, इनकी गति क्या है? अब इन तीन तत्वों के साथ आपका एक बैंक बैलेंस है जो इन 27 तत्वों में नहीं आता है, इट इज एक्स्ट्रा टू दैट, बोनस है वो आपके लिए, एक बैंक बैलेंस है आपके पास। और बैंक बैलेंस क्या है? व्हाट इज दैट बैंक बैलेंस? कर्म के फल। कर्म बैलेंस नहीं है, कर्म तो आपने कर दिया, इट इज फिनिश्ड, कर्म किया समाप्त हो गया, ठीक नहीं? हरे कृष्णा बोला समाप्त हो गया, पर इसका जो फल है वो एग्जिस्ट कर रहा, फल एग्जिस्ट कर रहा, ठीक है नहीं? तो फल जो एग्जिस्ट कर रहा है वो आपका बैलेंस बन रहा है, वो बैलेंस आपके लिए अवेलेबल है। आत्मा मृत्यु के बाद दो मुहूर्त में यमलोक जाती है, एक मुहूर्त जो है वो 48 मिनट का होता है, 48 मिनट्स, दो मुहूर्त में यमलोक जाती है। यमलोक जाने के बाद उसका फैसला होता है कि अब इसका फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, मतलब जो आपके कर्मों के फल का बैलेंस बना हुआ है, जो एग्जिस्ट कर रहा है आपके साथ, उसकी जो है लेखा जोखा, उसका जो है एनालिसिस होती है, और एनालाइज करने के बाद आपके लिए डिसीजन होता है कि अब आपको इसके बाद इस आत्मा की क्या गति होनी चाहिए। और दो मुहूर्त के अंदर वो आत्मा जो है लौट कर जहां से गई थी उसी स्थान पर वापस आ जाती है। मिस दो मुहूर्त में गई 1 आवर 36 मिनट्स और दो मुहूर्त में 1 आवर 36 मिनट्स में वापस आ गई। वापस आने के बाद आत्मा जो है जिस स्थान में वो रहती थी, जो उसका घर था, उसमें निवास करती है। एक अशौच का समय कहलाता है जिसको साधारण भाषा में सूतक कहते हैं, जो ब्राह्मणों में 10 दिन का होता है, क्षत्रियों में 12 दिन का होता है, वैश्यों में 15 दिन का होता है, शूद्रों में 30 दिन का होता है। तो 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 30 दिन वो आत्मा जो है उसी घर में विराजमान रहती है, और विराजमान होने के बाद वो देखती है कि मेरे लिए मेरी डिपार्चर के बाद ये घर वाले क्या कर रहे हैं, व्हाट एक्शंस दे आर परफॉर्मिंग फॉर मी। आत्मा आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है, भोगना उसे अपने कर्मों का फल है, आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। मैं कहूं जी इसको आप जो है जहाज में बिठा के बॉम्बे ले जाओ, बोले टिकट है क्या इसके पास, इसकी योग्यता है, एलिजिबिलिटी है, पैसे हैं इसकी जेब में या टिकट है, मैं इसको बॉम्बे ले जाऊं, नहीं है तो इसको यहीं रहने दो। इसी तरह मेरे कहने से कि भगवान इस आत्मा को आप यहां रख दो, यहां रख दो, यहां रख दो, या हजार दो हजार आदमी इकट्ठा होकर बोलें तो उसमें कोई सुनवाई नहीं है। बट शास्त्र कहता है, गरुड़ पुराण कहता है कि जब आप आत्मा के लिए पिंड दान करते हैं, जल पीपल को चढ़ाते हैं, दिया जलाते हैं, कुछ जो नियम कायदे कानून शास्त्र में बताए गए हैं उनका पालन करते हैं, तो आप आत्मा के लिए एक पैसेज बनाते हैं पितृलोक तक जाने का, उससे ज्यादा नहीं। पितृलोक जो कि आपके पाताल लोक की बगल में है, वहां तक जाने का, उनके सुखपूर्वक रहने के लिए आप इंतजाम कर देते हैं, उससे अधिक कुछ नहीं। और आपको 10 दिन तक पिंडदान करना है, कर्मकांड में आता है परंतु शास्त्र में इसका विधान है, उससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। बट अब प्रश्न आता है कि वो आत्मा अगर पितृलोक तक नहीं पहुंची, उसके कर्म ऐसे हैं कि आपकी सिफारिश के बावजूद पितृलोक तक नहीं जा पाई, यू हैव डन योर बेस्ट, पर कर्म ही उसके ऐसे थे कि भगवान ने कहा सॉरी योर रिक्वेस्ट इज नॉट एक्सेप्टेबल, आपकी आपका अनुरोध, आपकी प्रार्थना स्वीकार्य नहीं है, आई एम सॉरी, इसको वहां पर स्थान नहीं दे सकता। इसकी गति तो कुत्ते की योनि में जाने की है, इसकी गति बिल्ली की योनि में जाने की है, इसकी गति मच्छर बनने की है। तो वो जो गति मच्छर बनने की है, कुत्ते की योनि में, बिल्ली की योनि में, सांप, रेवला, जिस भी योनि में जाने की है, तो उस योनि में कैसे जाएगी, व्हाट इज द प्रोसेस, प्रोसेस क्या है। तो भगवान जो है भगवद गीता के अंदर 15वें अध्याय में बताते हैं, जैसे वायु फूलों की सुगंध को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाती है, इसी तरह आत्मा इस शरीर की समाप्ति पर कैरी करती है, उसको कौन कैरी करता है, मन बुद्धि अहंकार। सुगंधी को ले जाने के लिए कैरियर क्या था, वायु, वायु जहां से पास करेगी दुर्गंध हो दुर्गंध को ले जाएगी, सुगंध हो सुगंध को ले जाएगी, यहां दुर्गंध पड़ी है, यहां सुगंध पड़ी है, वायु क्रॉस कर रही है, पहले दुर्गंध को साथ उठाया फिर सुगंध को उठाया, मिक्सचर हो गया। ये आपके नाक की परसेप्शन है कि किसको प्रसीव करता है, दुर्गंध को प्रसीव करता है या सुगंध को प्रसीव करता है। बट उस सुगंध को या दुर्गंध को ले जाने के लिए एक कैरियर है, और कैरियर है वायु। तो इसी तरीके से जो शरीर है छोड़ने के बाद आत्मा जो है एक शरीर से दूसरे शरीर को जब धारण करता है तो उसके लिए कैरियर बनते हैं मन बुद्धि अहंकार, वाहन बन जाते हैं उसके। उस मन बुद्धि अहंकार रूपी वाहन पर सवार होकर अपने कर्म फल साथ में लिए हुए, क्योंकि बैंक है वो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होता है, वो समाप्त नहीं होता। जैसे हम कहते हैं कि सब मैंने जो है बैंक में बैलेंस खोला तो मेरा बेटा मेरा नॉमिनी है, उसने कहा मेरा बेटा नॉमिनी है, मतलब बैंक बैलेंस बंद नहीं हो रहा आपकी मृत्यु के बाद। आप किसी भी बैंक में जाके पैसा जमा करा के अकाउंट खोलो तो आपकी डेथ के बाद बंद नहीं होगा, चलता रहेगा वो, अब नॉमिनी किसी और को बना दो। तो यहां क्या है कि नॉमिनी कौन हो गया, नेक्स्ट बॉडी, जो आपने अगला शरीर धारण किया है उसके अंदर कर्म फल चले गए, वहां समाप्त हुए। अब इसमें क्वालिटी है, इसमें एक बहुत बड़ा गुण है कि मनुष्य योनि ही वह योनि है जिसके अंदर आप कर्म के फल का सृजन कर सकते हैं, कर्म के फलों को जनरेट कर सकते हैं, किसी और योनि में नहीं। और मनुष्य योनि छोड़कर बाकी जितनी योनियां हैं सारी की सारी भोग योनियां हैं, वहां पर आप अपने कर्म के फलों को भोग सकते हैं, वहां पर कर्म का फल जनरेट नहीं कर सकते। سمجھ میں آئی؟ اور کلیریفائی کروں، آپ حلوہ بنا سکتے ہو، کھا بھی سکتے ہو، کتا کھا سکتا ہے، بنا نہیں سکتا. ہی کین ناٹ کک. وہ کرم کر کے اس کے پھل کا سرجن نہیں کر سکتا. آپ کرم کر کے اس کے پھل کا سرجن کر سکتے ہو. اسی لیے شاستر کہتا ہے کہ منشیہ یونی ہی ایک ایسی یونی ہے جو آپ کو اسنکھیہ بار 84 لاکھ یونیوں کے چکر میں بار بار ڈال سکتی ہے، اور منشیہ یونی ہی وہ یونی ہے جہاں سے آپ اس 84 لاکھ کے چکر سے باہر نکل سکتے ہو. چوائس آپ کی ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہو، کون سی یونی میں جانا چاہتے ہو، یا ان یونیوں سے مکت ہونا چاہتے ہو. اگر آپ یونیوں سے مکت ہونا چاہتے ہو تو اس کا پروسیس الگ ہے، اگر آپ یونیوں میں جانا چاہتے ہو تو اس کا پروسیس الگ ہے. دونوں راستے الگ الگ ہیں. چوائس از یورس کہ آپ کون سے راستے پہ جانا چاہتے ہو، وہ آپ چن سکتے ہو. یہاں جو ہے ایشوپنیشد کے اندر ایک شلوک ہے کہ اپنے دھام میں اچل رہتے ہوئے بھی بھگوان من سے ادھک ویگوان ہیں اور ان سمست دھاوکوں کو پچھاڑ سکتے ہیں، شکتیشالی دیوتا بھی انہیں نہیں پا سکتے. ایک ستھان پر رہ کر وہ وایو تتھا ورشا کی پورتی کرنے والوں کو وش میں رکھتے ہیں، وہ شریشتتا میں سب سے آگے ہیں. شریشتتا میں سب سے آگے ہیں. یہاں کہا جا رہا ہے کہ بھگوان سمست بھوتک بدھی ارتھات سنسارک بدھی سے رہت ہیں. سنسارک بدھی کی کوالٹی کیا ہے؟ سنسارک بدھی ایک دم ترنت بھوگوں کے پرتی آکرشٹ ہو جاتی ہے. آئی وانٹ ٹو انجوائے دس، آئی وانٹ ٹو ٹیک دس، آئی وانٹ ٹو ٹیک دس، آئی وانٹ ٹو ٹیک دس. ایک دن میرے سے چرچا ہو رہی تھی، میں نے کہا بھی تم جو ہے ٹیلی فون یوز کرتے ہو، ٹیلی فون میں کیا چیز استعمال کرتے ہو، تم نے ٹیلی فون کیوں لیا ہوا ہے، مطلب وٹ از دی بیسک پرپز آف اوننگ اے موبائل فون، وٹ از دی بیسک پرپز، کیا پرپز ہے؟ بیسک پرپز ہے کہ آپ کسی بھی ستھان پر ہوں تو ایٹ لیسٹ یو آر ان ٹچ ود ادر ورلڈ. اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ تین چیزیں ضروری ہیں بس، وانٹ اونلی تھری تھنگس. پہلی چیز، ہرا بٹن دبائیں تو فون سن لے یا کر لے. دوسری چیز، لال بٹن دبائیں تو فون بند ہو جائے. اور تیسری چیز، ایک ٹیلی فون ڈائری جس میں کہ فون نمبر سٹور ہو، آپ کو بائیں دائیں نہ ڈھونڈنا پڑے، اٹ از اے ریڈی ریکنر. یہ کام 1000-1200 روپے کے فون میں بھی ہو سکتا ہے. تین بیسک کام ہے اس کے اندر بھی. آپ 48,000 روپے کا فون کیوں چاہتے ہو؟ کیونکہ آپ اس کے پرتی آکرشٹ ہیں. اس میں آپ کو فوٹو، یہ وہ، دنیا بھر کی باتیں، انٹرنیٹ مل رہا ہے، یہ مل رہا ہے، وہ مل رہا ہے. انٹرنیٹ کا یوز کیا ہو رہا ہے؟ ودھان سبھا میں لوگ جو ہے پورنوگرافی دیکھ رہے ہیں. آپ اس میں بھوگوں کے پرتی آکرشٹ ہو گئے. آپ کا انٹرنیٹ کا جو بیسک یوز ہے، جو فون کا بیسک یوز ہے، اس کے پرتی آکرشن تو سمجھ میں آتا ہے، پرنتو ایک کاسٹلی فون لینے سے آپ کیا ہے کہ آپ مایا کے پرتی آکرشت ہیں. یہ سانسارک بدھی ہے. اور سانسارک بدھی کے بارے میں جب آپ دوسرے ادھیائے میں جائیں گے تو بھگوان کہتے ہیں دھیاتو وشیان پنسا سنگ تیشو اپجائتے. مطلب جیسے ہی آپ نے جو ہے سنسارک بدھی کا استعمال کیا تو ریزلٹ کیا ہونے والا ہے؟ سنسارک بدھی سے آپ کی بھوگوں کے پرتی آکرشن ہوتا ہے، وشیوں کے پرتی آپ آسکت ہوتے ہیں. اس سے پھر اگلا سٹیپ کیا ہے؟ آسکتی کے بعد کامنا ہوتی ہے. کامنا پوری نہیں ہو تو کرودھ ہوتا ہے. کرودھ جب ہوتا ہے تو آپ موہ میں آ جاتے ہو. موہ میں آنے کے بعد سمرتی نشٹ ہو جاتی ہے. سمرتی پرشانت ہو جاتا ہے تو بدھی نشٹ ہو جاتی ہے. اور بدھی نشٹ ہونے پہ پنہ بھوکوپ میں گر جاتی ہے. سنسارک بدھی کا کاریہ کیا ہے کہ آپ بدھی کا پریوگ کر کے یہ سمجھیں کہ میں 84 لاکھ یونیوں کے چکر سے کیسے باہر نکل سکتا ہوں. اور ہوتا کیا ہے؟ بھگوان دوسرے ادھیائے میں کہتے ہیں جیسے پانی میں تیرتی ناو کو پرچنڈ وایو بہا کر دور لے جاتی ہے، उसी तरह किसी मनुष्य का मन किसी विचरणशील इंद्रिय पर जब लग जाता है तो वो इंद्रिय बुद्धि को नष्ट कर देती है। बुद्धि नष्ट होते ही भवकूप में गिर गए। तो सांसारिक बुद्धि का मतलब यह है कि उस बुद्धि को प्राप्त करके यूटिलाइज करके आप अपने लिए 84 लाख योनियों में भ्रमण करने का घूमने का टिकट हासिल कर लिए। यहां कहा जा रहा है कि भगवान जो है सांसारिक बुद्धि से रहित हैं और विस्मयहीन है। विस्मय विस्मय का अर्थ क्या होता है? विस्मय किसे कहते हैं? हैरानगी हो रही है, बड़ी हैरानगी हो रही है, आप बड़ी जल्दी हैरान हो जाते हैं। ये तो कल हमारे साथ घूमता था, आज एक बड़ी कंपनी का हेड हो गया, प्रेसिडेंट ऑफ सो एंड सो कंपनी। अब बड़े हैरान होते हो यार, आज इकट्ठे खेल दे सी, आज देखो कहां से विस्मय हो रहा। यू नेवर एक्सपेक्टेड कि दी विल कम टू दैट स्टेट, आपकी एक्सपेक्टेशन से बाहर है। परंतु भगवान समझते हैं, उनको विस्मय नहीं होता, उन्हें पता है ये मूर्ख आदमी इस भूलोक पे इस ब्रह्मांड में इस गैलेक्सी में मेरे को छोड़कर गया है, तो भगवान बनने गया है। ही वॉन्ट्स टू एंजॉय द वे ही लाइक्स। जब आप अपनी मर्जी से आनंद लेना चाहते हो इसका मतलब है आप भी भगवान बनना चाहते हो, बिकॉज यू डोंट वॉन्ट एनी ऑब्स्ट्रक्शंस, यू डोंट वॉन्ट एनी ऑब्स्टेकल्स इन योर पाथ। उसने कहा कि आप ये काम क्यों कर रहे हो? मेरी मर्जी, व्हाट इज दैट मेरी मर्जी, व्हाट इज मेरी मर्जी? मेरी मर्जी मींस कि आई एम द मास्टर नाउ, आई कैन परफॉर्म द वे आई लाइक। मैं मास्टर हूं, मैं स्वामी हूं, मालिक हूं, मैं जैसा मर्जी चाहे वैसा कर सकता हूं, मैं जैसा चाहूं वैसा कर सकता हूं। इसका मतलब यह है कि मैं मास्टर हूं, मैं स्वामी हूं। मैं मास्टर होने का मतलब है मैं भी भगवान बनना चाहता हूं। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन टुडेज डेट। आज आपको असंख्य भगवान मिल जाएंगे टीवी पर लेक्चर देते हुए, जो अपने आप को जो है भगवान की तरफ पोज करते हैं। यस आई एम गॉड। भगवान एक है, अनेक नहीं हो सकते। तो भगवान बनने की जो जो एक एक होड़ है, एक कोशिश है, उस कोशिश को देखते हुए भी भगवान को विस्मय नहीं होता। रोटी मुझे कोई हैरानगी नहीं हो रही, यही करने तो क्या था ये। आई एम नॉट सरप्राइज्ड, आई एम सरप्राइज्ड कि मैं इससे एक्सपेक्ट नहीं करता था। मैं सरप्राइज नहीं हूं क्योंकि मैं तो इससे एक्सपेक्ट करता था, मुझे पता था इसने यही करना। मुझे ये तो मालूम था कि मेरे धाम को छोड़कर मेरे घर को छोड़कर ये क्यों गया है, किस लिए गया है। क्योंकि मेरे धाम में ये जब था तो मेरे जैसा ऐश्वर्य मिलते हुए भी ये मुझे रिप्लेस करना चाहता था, मैं बनना चाहता था। देखिए ना, पांच प्रकार की मुक्ति है, अभी टॉक ऑफ मुक्ति, देयर इज अ फाइव टाइप्स। सायुज्य मतलब आप भगवान के साथ ब्रह्म ज्योति के अंदर रह रहे हैं, आप भगवान के साथ ब्रह्म ज्योति में विराजमान हैं, बट यू डोंट हैव ए बॉडी। आप सोल एक इंडिविजुअल पार्टिकल के रूप में ब्रह्म ज्योति में तैर रहे हैं। अब भगवान ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, भी तूने बड़ी भक्ति करी हुई है, इस मनुष्य को मैं अपने लोक में ले लेता हूं। तो सालोक्य हो गई कि भगवान के लोक में चला गया। अब लोक कोई छोटा मोटा तो है नहीं। पीएम ने कहा तेरे को पासपोर्ट दे दिया इंडिया में आने के लिए। बोले साहब मैं तो जो है आपके पास रहना चाहता हूं, तो उसके लिए कुछ और गुणों को प्राप्त और एलिजिबिलिटी और योग्यता प्राप्त करनी पड़ेगी। तो भगवान जो है जीव को अपने पास अपने लोक के अंदर अपने पास रखना चाहते हैं। तो सामीप्य हो गया, यू आर वेरी नियर टू दी लॉर्ड। सालोक्य हो गया, सामीप्य हो गया। جیسی گاڑی آپ کے پاس ہے ایسی گاڑی میں گھوموں گا، جیسا گھر آپ کے پاس ہے ایسے گھر میں رہوں گا، جیسے کپڑے آپ پہنتے ہو، جیسے آپ کو ایشوریہ پراپت ہو رہا ہے ایسا ایشوریہ مجھے بھی چاہیے، آئی آلسو وانٹ ٹو ہیو اٹ۔ تو پی ایم کہتا ہے ٹھیک ہے، اس کے لیے یہ یوگیتا ہے بھائی، تھوڑا اور یوگیہ بن جا تو میرے جیسا روپ دھارن کر سکتا ہے، ساروپ پہ بھگوان جیسا روپ مل رہا ہے۔ آپ بھگوان کے دھام میں مور بن کے بھی رہ سکتے ہو، بتک بن کے بھی رہ سکتے ہو، گھاس بن کے بھی رہ سکتے ہو، بھگوان کو جس جس پرانی سے جس جس وستو سے انجوائے کرنا ہے ویسا آپ کو سوروپ دے دیتے ہیں۔ بٹ جو بہت نکٹ ہیں، جو بہت بڑے بھاری بھکت رہے ہیں، ان کو بھگوان اپنے جیسا روپ پردان کرتے ہیں۔ اب گاڑی کی بات آئی، گاڑی گھوڑا چاہیے، ویسا مکان چاہیے، ویسا یہ چاہیے، ویسا وہ چاہیے۔ پی ایم کہتا اچھا اچھا ایسا چاہیے، اس کے لیے کچھ اور یوگیتائیں ہیں، ان یوگیتاؤں کو حاصل کرو تو تم یہ پراپت کر سکتے ہو۔ تو بھگوان کہتے ہیں اچھا اچھا، تم کو اور یوگیتا حاصل کری ہے، اب میں تمہیں اپنے جیسا ایشوریہ دیتا ہوں ساشٹی۔ تو بھگوان اپنے جیسا ایشوریہ دے رہے ہیں، اس کو بولتے ہیں ساشٹی۔ سا آ کی ماترا، پیٹ کٹا کھا، ٹا چھوٹے ای کی ماترا، اوپر را، ساشٹی۔ تو آپ بھگوان کے دھام میں گئے، پرنتو بھگوان کے دھام میں ایسا آپ کو ایشوریہ مل رہا تھا، ایسا سامیپ مل رہا تھا، پرنتو آپ نے کہا یہ تو سب ٹھیک ہے، اب پی ایم جی میں تو آپ کی کرسی بیٹھنا چاہتا ہوں، پنگا ہو گیا، آئی وانٹ ٹو سٹ ان یور چیئر۔ آپ نے مجھے اپنے جیسا روپ دے دیا، اپنے جیسا ایشوریہ دے دیا، اپنا لوگ دے دیا، اپنا سامیپ دے دیا، یو گیون می آل دا تھنگس، بٹ آئی وانٹ ٹو ریپلیس یو آن دس چیئر، آئی وانٹ ٹو سٹ ایز یو آر۔ بس دو پی ایم ہو جائیں، چار پی ایم ہو جائیں، آٹھ پی ایم ہو جائیں۔ تو یوگ مایا پونڈ ماسی دیوی وہ کہتی بھی دیکھو ایسا ہے، اس میان میں ایک ہی تلوار رہ سکتی ہے، دوسری نہیں، اس میان میں ایک ہی تلوار رہ سکتی ہے، دوسری نہیں۔ تو اگر تم ان جیسا بننا چاہتے ہو، مطلب تم بھگوان بننا چاہتے ہو، تو تمہیں ایک نیا لوک دیتی ہوں، وہاں بھگوان بن جاؤ، پرتھوی لوک پہ جاؤ، جا کے بھگتو، جو مرضی کرو، بھگوان بنو، الٹا سیدھا جو من میں آئے وہ کرو۔ تو اس کو ایک لوک ارتھا پرتھوی لوک پہ یا کسی اور بھون میں اس کو پھینک دیا گیا۔ اب بھگوان کو اس میں یہاں پہ آ کے جیو جو ہے طرح طرح کے کرتب کر رہا ہے، الٹے سیدھے کام کر رہا ہے، بھگوان کو بھول گیا ہے۔ تو بھگوان کو وسمے نہیں ہوتا، یہ تو ایکسپیکٹڈ تھا، اس سے تو یہی امید تھی، دس نتھنگ ان نیچرل، کوئی انہونی نہیں ہے۔ جو میرے دھام کو چھوڑ کر میرے سے ایرشیا کر کے، میرے سے دویش کر کے یہاں سے چلا گیا ہے، اس کے لیے میرے کو کوئی وسمے نہیں ہے، یہ تو میں اس سے ایکسپیکٹ کرتا تھا ایسے ہی کرے گا یہ۔ تو بھگوان جو ہے وہ سنسارک بدھی سے رہت ہیں اور وسمے وہین ہیں، پرسن چت ہے اور سوروپ سدھی سے پرم سنتوشت رہنے والے۔ ہم اسنتوشت ہیں، وی آر ناٹ سیٹسفائڈ، ہم اسنتوشت تھے تبھی یہاں آئے، اور یہاں آ کے ہمیں کچھ بھی پراپت ہو جائے، یو مے ہیو تھاؤزینڈ اینڈ تھاؤزینڈ آف کروڑز آف روپیز، تب بھی آپ کی کامنا پوری نہیں ہوتی، آپ اسنتوشت ہو۔ دو بھائی مل کے آپس میں نہیں رہ سکتے، اربوں روپیہ ہے، پوتے پر پوتے کے پوتے کے پر پوتے پیڑیوں خرچ کرے تو خرچ نہیں ہونے والا، تب بھی سنتوشٹی نہیں ہے، تب بھی ایک نئی چیز چاہیے، نہ کمپنی اور کھولی جائے گی، ایک کمپنی اور چاہیے، ایک کمپنی اور چاہیے، کم ہے ذرا۔ اب میری جو ہے انٹرنیشنل آٹھ کمپنیاں ہیں، تو انٹرنیشنل جو بھائی ہیں اس میں میرا نمبر چوتھا آتا ہے، اس کا پہلا ہے، تو میں اسے بیٹ کر کے اس کے اوپر جانا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے چار کمپنی اور خریدنے کی سوچی، تب تک اس نے دو اور لے لی، تو چھ آ گئی لسٹ میں، پھر آپ نے کہا میں چھ پار کر جاؤں گا، اس نے تین اور لے لی، تو آپ کو نو پار کرنی ہے۔ مطلب کامنا جو ہے آپ کی بڑھتی جا رہی ہے، آپ کسی بھی حالت میں سنتوشت نہیں، یو آر ناٹ سیٹسفائیڈ۔ پر یہاں جو ہے بھگوان کا گن بتایا جا رہا ہے کہ بھگوان سب کی اچھا پورتی کرتے ہیں۔ ایشو پنیشد کے اندر آٹھویں منتر میں لکھا گیا ہے، اس ایسے سب سے مہان پرش کو صحیح صحیح جاننا چاہیے، صحیح صحیح، जो अधेयधारी सर्वज अनिंद शेराओं से विहीन शुद्ध अदूषित आत्मनिर्भर दार्शनिक हैं, जो अनादि काल से हरेक की इच्छाओं की पूर्ति करते आ रहे हैं। डिजायर आपकी फुलफिल होगी, बट उसके पीछे है एक स्टार। आप अखबार में एड पढ़ते हो, बड़े बड़े ऑफर आते हैं, नीचे एक छोटा स्टार लिखा होता है, कंडीशंस अप्लाई लिखा आता है, कंडीशंस अप्लाई। आप जो मर्जी इच्छा करो वो पूर्ण होगी, बट कंडीशंस अप्लाई, कि आपके कर्मों के फल में उसका स्थान है या नहीं है। कंडीशंस क्या है? योर कर्म फल। अगर आपके कर्म के फल के अंदर जहाज में घूमना लिखा है तो आप पायलट बन सकते हो। कर्म के फल में जहाज में घूमना लिखा है तो आप पायलट वाली जहाज रख सकते हो। यू कैन हैव योर ओन चार्टर्ड प्लेन, वो चला रहा है, आप पीछे बैठे हो, घूम दोनों रहे। कहता मेरा बेटा जो है उसके चारों तरफ गाड़ियां घूमती हैं। बोले क्या है, ये पुलिस में हवलदार है, चौक पे खड़ा रहता है, चारों तरफ गाड़ियां घूम रही, बट ही कैन ओन द कार्स। वो कर्म फल पे डिपेंड करता है कि आपके कर्म फल आपको किस सिचुएशन में लेके जाते हैं। तो भगवान जो है हमेशा संतुष्ट रहते हैं, भगवान कभी असंतुष्ट नहीं होते, ना कभी उनको विस्मय होता है। उनके पास कोई सांसारिक उपाधि नहीं है, सब चीजों के स्वामी हैं, ही इज ओनर ऑफ एवरीथिंग। तब भी वो कहीं पे मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ए कंपनी नहीं कहलाते। अब ये भी नहीं कहते यू सी कृष्णा इज प्रेसिडेंट ऑफ दिस यूनिवर्स, वो भी नहीं है, इज द मास्टर ऑफ दिस यूनिवर्स। जो हमारी सांसारिक उपाधियां हैं वो उनके पास नहीं है, वे स्थिर रहते हैं और विरक्त रहते हैं। स्थिर का मतलब है वही प्रसन्नचित, विचलित नहीं होते, कभी डिस्टर्ब नहीं होते, कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। एक गलत काम हम करें, परेशान भगवान हो। संसार में क्या होता है, गलत काम आप करते हो, परेशान मोहल्ले वाले भी होते हैं, माता पिता भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं और पत्नी भी होती है। गलत काम किसने किया? आपने। परेशान भौतिक संसार में आपसे कनेक्टेड सारे लोग हो रहे हैं, परंतु भगवान से गलत कुछ होता ही नहीं, किसी को परेशानी देते नहीं। जो परेशानी आपको मिल रही है आपके कर्मों के फल के अनुसार मिल रही है, वो परेशानी आपका अपना जनरेशन है, दिस इज नॉट अलॉटेड टू यू, आपने अर्न किया है उसे। आपने अपनी परेशानी को, अपने दुख को, अपनी चिंताओं को, अपने कष्टों को अर्न किया है, आपको भीख में नहीं मिली है, वो आपको अलॉटमेंट नहीं है। अच्छा इसको ये अलॉट कर दो, इसको ये अलॉट कर दो, इसको ये अलॉट कर दो, इसको, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आप जो है दुख, चिंता, परेशानी, टेंशन झेल रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ योर ओन डीड्स, अपने ही कर्मों के फल के अनुरूप है वो, आपका सैंक्शन है अकॉर्डिंग टू योर कर्मस, वो आपको अलॉटमेंट नहीं हो रहा। आप क्यों में नहीं खड़े, अच्छा मुझे ये वाली परेशानी दे दो, बोला मुझे ये परेशानी दे दो, मांग भी नहीं रहे हैं और ना वो अपने आप दे रहे हैं। दैट इज योर ओन अर्नड प्रॉब्लम्स। तो श्री भगवान ही सबों के एकमात्र आश्रय हैं। आश्रय का मतलब ये है कि आप उनके सहारे ही इस भौतिक संसार को पार कर सकते हो, और कोई तरीका नहीं है, देयर इज नो वे, देयर इज नो वे। क्यों? कि मुक्ति प्रदाता जो है स्वयं विष्णु, स्वयं कृष्ण ही आपको मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, इसलिए मुकुंद कहलाते हैं, और कोई आपको मुक्ति नहीं दिला सकता। मुक्ति का अर्थ केवल एक है, वो है कि लौटकर इस भौतिक संसार में नहीं आना, और ऐसी कमिटमेंट आप शास्त्रों के अंदर पढ़ेंगे तो सिर्फ एक ही ने करी है, कृष्ण ने। न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावक है, यद गत्वा निवर्तन्ते तदहं परमं मम। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनर्वर्तनो अर्जुना माम उपेत्या तो कौन्तेय पुनर्जन्मना विद्यते। जो मेरे धाम में आ जाता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता, और मेरे धाम में तो मैं ही ले जा सकता हूं और कोई ले जा नहीं सकता। हे बात जो है प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं कि भगवान के चरण कमल अविनश्वर नाव के तुल्य है, यदि कोई इस नाव का सहारा लेता है तो ज्ञान सागर को सरलता से पार कर जाता है। अच्छी कंपनी खोली, कैसे चलेगी यार, उसकी नकल मार लो, जैसे जैसे उसने किया है ना वैसे वैसे करो, पार हो जाओगे। اس نے کہا پاپا مجھے آئی آئی ٹی میں ایڈمیشن لینا ہے. دیکھ وہ ہے نا تیرا دوست, اس نے لیا ہے نا, اس کے پد چنوں پہ چل, جیسے جیسے اس نے کیا ہے اس پہ چل, تیرا آئی آئی ٹی میں ایڈمیشن ہو جائے گا. بٹ ڈیویٹ مت کریو. اس نے دو سال میں ایک بھی فلم نہیں دیکھی, دو سال میں انٹرنیٹ نہیں لگایا, دو سال میں گھومنے نہیں گیا, دو سال ٹی وی نہیں دیکھا. تجھے بھی ایسے ہی کرنا ہے, مینس فالو دا فٹ اسٹیپس. تو یہاں جو ہے بتا رہے ہیں کہ اگر آپ بھگوان کے چرنوں پہ, ان کے بتائے مارگ پر, ان کے پد چنوں پہ چلو گے, جو بھگوان نے مارگ بتایا ہے اس پہ چلو گے, تو آپ بھوتک سنسار کو پار کر جاؤ گے. دیٹ از دی اونلی وے. بھگوان تیسرے ادھیائے میں کہتے ہیں 31 شلوک میں, جو میرے آدیش کا شردھا پوروک اور ایرشا رہت ہو کر پالن کرتا ہے, اس پر چلتا ہے, اس بھوتک سنسار میں کرم کے پھلوں سے مکت ہو جاتا ہے. چوتھے ادھیائے میں کہتے ہیں جس طرح اگنی سمست پرکار کے ایندھن کو جلا کر بھسم کر دیتی ہے, اسی پرکار سے گیان روپی اگنی سمست کرم پھلوں کو جلا کر بھسم کر دیتی ہے. مینس گین نالج اینڈ ایکٹ آن دیٹ. گیان پراپت کریے اور گیان کے پراپتی کے بعد اس گیان کا جو سندیش ہے اس کے اوپر چلیے, تو آٹومیٹیکلی آپ جو ہے اس بھوتک سنسار سے پار ہو جائیں گے. آپ کے پاس اس کے سوائے اور کوئی چارہ نہیں ہے. اب یہاں بات ہو رہی ہے کتے کی پونچھ کی, بڑا اچھا ادھارن دیا ہے. آپ کو جانا کہاں ہے, ویئر ڈو یو وانٹ ٹو گو. میونسپل کارپوریٹر کی آپ سیوا کرتے ہو, پوجا کرتے ہو, ارچنا کرتے ہو, اس کے آگے پیچھے گھومتے ہو, ایمس کا پالش لگاتے ہو, اس کو سب کچھ, تو کیا آپ کو وہ گورنمنٹ آف انڈیا میں کیبنٹ منسٹر بنوا سکتا ہے؟ ایسے میونسپل کارپوریٹر میونسپل کارپوریشن کا ہی کام آپ کو کرا کے دے سکتا, اس سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے. ایم ایل اے ودھان سبھا کا ممبر, اس کی بھی ویلیو جو ہے اوپر تک نہیں ہے, اپنے لیول کا کام کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, ممبر پارلیمنٹ اس کی ایک لمیٹیشن ہے, اپنے لیول پہ کام کر سکتا ہے. کیبنٹ منسٹر اس کی ایک لمیٹیشن ہے, اپنے کام کر سکتا ہے. پی ایم سب کام کر سکتا, پورا کیبنٹ اس کے اندر ہے. ابھی تو گھوٹالے پی ایم او سے ہو رہے ہیں, جو کام ہے پی ایم او سے آتا ہے, اس نے اوکے کر دیا ہے, گھوٹالا ہو گیا. اگر آپ کسی دیوی دیوتا کی بھکتی کرتے ہیں تو آپ کو اپنے گھر لے جا سکتا ہے وہ. یس یو کین کم ٹو مائی پلیس, آئی کمٹ یو. میری آپ سے کمٹمنٹ ہے کہ آپ میری بھکتی کر رہے ہو, میری سیوا کر رہے ہو, میری پوجا, میری ارچنا, میرے لیے آپ سمرپت ہو, تو میرے گھر آ جاؤ, ویلکم, میرے دروازے آپ کے لیے کھلے. پر آپ سیوا تو کرو لوکل کارپوریٹر کی, اور گھسنا چاہو پی ایم کے گھر میں تو پی ایم کیسے آنے دے گا آپ کو؟ پر جس کی سیوا کر رہے ہیں اس کے گھر جانا, میری تو نہیں کر رہا نا, میں تجھے پہچانتے ہی نہیں, تو کون ہے کون نہیں ہے. ایگزامپل دے رہا ہوں میں. اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ اگر آپ کو جو ہے یہ سوچیں کہ میں کسی کارپوریٹر کا ہاتھ پکڑ کے پی ایم کے گھر میں چلا جاؤں گا تو بیوقوفی ہے. اگر تم یہ سوچیں کہ بھو ساگر اتنا بڑا جو ہے سنسار, بھوتک سنسار ہے, میں اس بھوتک سنسار سے مکتی پراپت کرنا چاہتا ہوں, تو مجھے پہلے یہ ڈھونڈنا ہوگا کہ مکتی پراپت کرنے کی, میری مکتی پراپت کرانے کی یوگیتا کس میں, ہو از ایلیجیبل ٹو ڈیلیور می. میرے کو اگر آپ نے بامبے کی ٹکٹ لی ہے تو بھائی بامبے جاؤ گے, وہاں سے گوا نہیں جا سکتے, بامبے میں جہاز آپ کو اتار دے گا. اگر آپ نے گوا کی ٹکٹ لی ہے تو تریویندرم نہیں جا سکتے, جہاز آپ کو گوا میں اتار دے گا. مس جہاں کی ٹکٹ لی ہے وہیں تک جا سکتے ہو. اگر آپ نے کسی دیوی دیوتا کی ٹکٹ خریدی ہے تو اس کے گھر میں جا سکتے ہو, بھگوان کے دھام میں کیسے جا سکتے ہو؟ بھگوان کے دھام میں جانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ بھگوان کے دھام کی ٹکٹ لو آپ. اور ٹکٹ کہاں کی لے رہے ہیں آپ؟ بھکتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, ایم ناٹ ٹاکنگ آف ڈیووٹیز, ایم ٹاکنگ آف اے آرڈنری پرسن. وہ کہاں کی ٹکٹ لے رہا ہے؟ اور دیکھیے ہر ٹکٹ کی قیمت ہے. کئی بار آپ کو کمپلیمنٹری بھی ملتی, فری کمپنی دے دیتی ہے نا, جا بیٹا گھومے جا کے, تیرا ہالیڈے ٹرپ ہے فیملی کے ساتھ, पत्नी भी ले जा, बच्चे भी ले जा, तू भी चला जा, जहाज में जा, होटल में ठहर, घूम घाम के वापस आ जा। यू आर गिविंग योर हॉलीडे ट्रिप। आपको टिकट जो है उसको खरीदने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। सिंगापुर घूमने जाना है जी, एक व्यक्ति का कितना खर्चा है? 36,000 रुपये, 40,000 रुपया, 50,000 रुपया, घूमने गए, घूम के वापस आ गए। अगर आपको जो है भगवान के धाम जाना है तो उसकी टिकट की कॉस्ट क्या है? अगर आपको भगवान के धाम नहीं जाना है, 84 लाख योनियों में जाना है, नरक में जाना है, तो उसकी कॉस्ट क्या है? नरक में जाना है वो भी कॉस्टली टिकट है, ऐसा चीप नहीं है, इट्स वेरी कॉस्टली। नरक में जाने के लिए आपको पाप का कार्य करना है तभी नरक में एडमिशन है। ऐसे नहीं मिलेगा थोड़ा घुसे चले जाए नरक के अंदर, उसके लिए भी तो मेहनत करनी पड़ेगी। नरक में ऐसे ही चले जाओगे क्या? पाप का कार्य करना है। आपने कहा हा पाप का कार्य, मैं जानवर मारूंगा और खाऊंगा, तो जानवर को मारना उसकी कॉस्ट, 5 लाख का बकरा बिका, 15 लाख का बकरा बिका, कॉस्ट है ना, महंगा है। अगर आप जो है बकरे की दुकान पे जाते हैं, उससे कहते हैं मीट दे दे, तो यू हैव टू पंप इन मनी फ्रॉम योर पॉकेट, जेब खाली करनी पड़ेगी। शराब पीनी है, जेब खाली करनी पड़ेगी। पर स्त्री पर पुरुष संबंध रखना है, जेब खाली करनी पड़ेगी। गैम्बलिंग करनी है, जेब खाली करनी पड़ेगी। और खाली तभी होगी जब उसको भरोगे, और भरने के लिए अथाह परिश्रम करना पड़ेगा। सवेरे 8 बजे, 7:30 बजे कैब आ गई, बैठ गए दुकान पे चले गए, बिजनेस खोल लिया, और रात में 11 बजे 10 बजे वापस आ रहे हैं। सारा दिन गधे की तरह मेहनत करने के बाद पैसा इकट्ठा किया, और शाम को बोले जा 2 चिकन के पीस ले आ, 2 मीट ले आ, 2 किलो 1 किलो पर खाएंगे पिएंगे आराम करेंगे। मतलब नरक जाने की आपने तैयारी कर ली है, यू हैव प्रिपेयर्ड योर सेल्फ, बट यू हैव पेड ए बिग कॉस्ट फॉर इट। महंगाई के अंदर महंगी वस्तुएं खरीद के आपने नरक जाने की तैयारी करी। अब भगवान के धाम जाना है, भगवान क्या कहते हैं? अरे मेरा स्मरण कर भाई, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भगवान कहते हैं अनन्य चेता सत्यम यो माम स्मृति नित्यशय तस्याम सुलभार्था नित्य युक्तस्य योगिना, कि तेरे चिंतन में मेरे सिवाय कोई और होना ही नहीं चाहिए। It's only me, that's all. अगर तेरे चिंतन में मेरे सिवाय कोई और आ जाएगा तो तू मेरे धाम में नहीं आ सकता, क्योंकि तूने बीच में एक ऑब्स्टेकल लगा लिया। और में क्या चीज है? आपका शरीर है, आपका संसार जिसमें आप रह रहे हो, संबंधी है, नातेदार हैं, आपका ज्ञान, आपका कर्म, सब चीजें और वस्तुओं में आ जाती हैं। भगवान कहते हैं तेरे चिंतन में मेरे सिवाय और कोई नहीं होना चाहिए। निरंतर सततम नित्य एवरी मिनट एवरी मोमेंट एवरी क्षण। और एक क्षण का साइज कितना है? व्हाट्स वन क्षण कितना होता है? शास्त्र कहता है अगर आप कमल के पत्ते को सुई से छेद करते हो तो 3 क्षण हो जाते हैं। पहले क्षण में टच किया है, दूसरे क्षण में पियर्स किया है, तीसरे क्षण में बाहर निकल आया। इतना समय भी कृष्ण का विस्मरण नहीं होना चाहिए, तो बेनिफिट क्या है? तस्याहम सुलभ पार्थ, पार्थ मैं उसके लिए सुलभ हूं, तुम पुकारोगे और मैं चला आऊंगा। दैट इज द क्वालिटी। तो भगवान के धाम जाना आसान कार्य है, खर्चा कोई नहीं है, यू डोंट हैव टू डू एक्स्ट्रा अर्निंग्स, मुफ्त का काम है सारा। पर मुफ्त के काम में क्या है? यू हैव टू कंट्रोल योर माइंड, अपने मन को वश में करना है। मन को वश में करके संसारिक कार्यों से हटाकर आपको भगवान के कार्यों में लगाना है। भगवान 5वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहते हैं जिस तरह कमल का फूल कीचड़ में रहते हुए भी उस कीचड़ से अतृप्त रहता है, उससे तृप्त नहीं होता, अलिप्त रहता है उससे, इसी तरह तुमको भौतिक संसार में रहते हुए भी आर्ट ऑफ लर्निंग, आपको सीखना पड़ेगा कि भौतिक संसार में रहते हुए भी भौतिक संसार से लिप्त नहीं होना, उसमें फंसना नहीं है। वो अलिप्त कैसे रहना है? दिस इज कर्मसु कौशलम, ये कर्मों की कुशलता है कि आप उसको लर्न करेंगे कि भौतिक संसार में भौतिक वस्तुओं का प्रयोग करते हुए मैं उनमें लिप्त नहीं। दैट इज द आर्ट ऑफ लर्निंग, आपको सीखना पड़ेगा। और जिस दिन आप ये सीख लोगे आपको कोई बनावटी विचार रहेगा ही नहीं। जो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं आगर में कि मनुष्य को चाहिए अपने बनावटी विचारों के बजाय शक्तिमान की शरण खोजे। फिर आप नहीं कहोगे मैं ऐसा कर तो ऐसा हो जाएगा, मैं, अरे भाई तू ज्यादा अकलमंद है कि भगवान ज्यादा अकलमंद है? हु इज मोर इंटेलिजेंट? भगवान ज्यादा अकलमंद है, उनकी बात मान ले, काहे पंगा ले रहा पंगे में क्यों पड़ रहा? फॉलो व्हाट ही सेज एंड ही विल डिलीवर यू, आपको अपने घर ले जाएंगे, आपको अपने धाम ले जाएंगे। तो यहां जो है प्रश्न आ रहा है कि जैसे कुत्ता समुद्र को जो है तैर सकता है पर उसमें योग्यता नहीं है आपको पार ले जाए, इज नॉट एलिजिबल फॉर दैट, उसके उसके पास क्वालिटी नहीं है। इसी तरह आप बाएं दाएं कहीं भी घूमोगे आप, वो उसके पास क्वालिटी नहीं है कि आपको वो जो है इस भवसागर से पार ले जाए। सासर बहू ने कथा सुनी, जब घर से आई थी नदी में पानी घुटने तक था, पार करके आ गई, जब वापस आई तो बारिश आ गई थी, थोड़ा पानी बढ़ गया था, पानी छाती तक आ गया, डूबने का खतरा था। कथा में कहा गया हरे कृष्ण महामंत्र करोगे, हरि नाम लोगे तो आप भवसागर से पार हो जाओगे। बहू ने अपना हरे कृष्णा किया और नदी में पैर रख दिया, सास रुक गई पीछे, ए जल्दी इधर आ जा कामिनी, जल्दी जल्दी, क्या वो डूब जाएगी, मर जाएगी, ये पानी देख चढ़ा हुआ है बिल्कुल यहां तक। कहती अम्मा वो महात्मा जी कह रहे थे ना हरे कृष्ण महामंत्र में कर रही हूं ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम स्मरण कर रही हूं ना, तो मैं इसे भवसागर पार कर सकती हूं, तो छोटी सी नदी है। तो सास कहती सास तू है कि मैं हूं बता, जब मैं कह रही हूं नहीं जाना है तो नहीं जाना, श्रद्धा ही नहीं, श्रद्धा नहीं है। तो इस कार्य में हमको सबसे पहले श्रद्धा चाहिए कि हमें कौन भवसागर से पार लगा सकता है, किसके पास योग्यता है, किसके पास एलिजिबिलिटी है। तो भगवद गीता में स्पष्ट लिखा है कि भगवान के धाम जाओगे जब पुण्यफल समाप्त हो, पुण्यफल समाप्त करके जाओगे, पापफल समाप्त करके जाओगे, परंतु देवी देवता के धाम जाओगे तो पुण्यफल समाप्त होने पर लौटकर इस संसार में आओगे। भगवान के धाम जाने के लिए न मन चाहिए, न बुद्धि चाहिए, न अहंकार चाहिए, न कर्मफल चाहिए। सोल गोज इंडिविजुअली विदाउट एनी सपोर्ट, के पास कोई सपोर्ट नहीं होता, बिल्कुल विदाउट एनी सपोर्ट। किसी और में धाम जाने के लिए उसको जो है मन बुद्धि अहंकार साथ में रहते हैं। मन बुद्धि अहंकार नहीं होते तो इंद्र अहंकार में नहीं होता। गलत काम किए ना इंद्र ने, पीछे ही पड़ा है, गुरु बृहस्पति का अपमान कर दिया, समझे नहीं? राम अवतार में जब जाते हैं तो अहिल्या को उसने जो है गौतम ऋषि बन के भोगा। मन बुद्धि अहंकार हर लोक में है, केवल एक जगह नहीं है जो भगवान का लोक है, वहां पर आप जो है मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म शरीर भी समाप्त हो जाता है और आपके कर्मों के फल भी समाप्त हो जाते हैं। हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चन? वो डिपेंड करता है आपके कर्म के फलों के अनुसार कि आपको वहां कितने वर्ष के लिए स्थान मिलेगा। अल्टीमेट एम तो वहां रहने का नहीं है ना। मैंने आपके लिए कार्य किया, कुछ आपके कर्म के फल थे, आपको कश्मीर में जो है 15 दिन का हॉलीडे ट्रिप मिल गया, 15 दिन के बाद क्या होगा? यू हैव टू कम बैक। वो तो आपके लिए एक सुलभ स्थान है जहां पर आप आराम से पितरों के साथ रह सकते हैं, पर दैट इज नॉट ए परमानेंट अबोर्ड। वो परमानेंट अबोर्ड सिर्फ एक ही है, दैट इज ठाकुर जी का धाम, नो वे एल्स, और कोई नहीं। बाकी सब जगह पे मूवमेंट है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, मूव आपको करना पड़ेगा, नो वे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की।